नमस्कार।
हाँ,
आज हम एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का प्रबुद्धों का आमंत्रण।
हाँ,
ये उद्बोधन सीधे हम जैसे मतलब औसत भारतीय नागरिकों को संबोधित है।
हाँ बिल्कुल।
और हमारा इरादा है कि वंदनीय माता जी के विचारों के उन खास पहलुओं को समझें जो हमें व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर जगाने की बात करते हैं।
बिल्कुल, एक तरह से चेतना जगाने का आह्वान है ये।
तो चलिए शुरू करते हैं। वंदनीय माता जी जब कहती हैं प्रबुद्ध, तो उनका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ पढ़ा लिखा होना तो नहीं लगता?
नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ प्रबुद्ध होने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या बौद्धिकता से कहीं ज्यादा गहरा है। उनका सीधा संबंध है हमारी भावनाओं के जागरण से, हमारी संवेदनाओं से।
अच्छा, भावनाएं।
हाँ, वंदनीय माता जी कहती हैं कि असली जागृति मतलब सच्ची प्रबुद्धता तब है जब हमारी भावनाएं सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे स्वार्थ इनसे ऊपर उठ जाए, जब वो पूरी दुनिया के हितों से, करुणा से, दूसरों के दर्द से जुड़ जाए।
और वो उस समय के समाज पर, जो शायद आज भी उतना ही सच है, टिप्पणी भी करती हैं कि कैसे इंसान अक्सर भाव शून्य सा हो गया है। यहां तक कि ईश्वर भक्ति भी कई बार स्वार्थ से प्रेरित लगती है, बस अपनी मांगे पूरी हो जाएं।
हाँ, ये बात तो है।
हम मांगना तो जानते हैं, पर समाज को, दूसरों को कुछ देने का भाव, वो शायद कमजोर पड़ गया है।
तो इसका मतलब ये सिर्फ एक अंदरूनी बदलाव की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की तरफ भी इशारा है।
निश्चित रूप से, बिल्कुल। भावनाओं का जागरण असल में अपने साथ एक जिम्मेदारी लाता है। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देती हैं, उनके अथक परिश्रम का, उनके विश्व कल्याण के चिंतन का।
हाँ।
वो हमें, खासकर जिन्हें वो बुद्धिजीवी कहती हैं, मतलब सोचने समझने वाले लोग, उन्हें याद दिलाती हैं कि समाज में जो गलत चीजें हैं, जैसे जातिवाद है, दहेज प्रथा है, भ्रष्टाचार है, जीवन जीने का उत्साह है, उम्र से फर्क नहीं पड़ता।
सही बात। और इसी से जुड़ा है शायद समर्पण, इसकी क्या भूमिका है?
हाँ, समर्पण। पर यहाँ समर्पण का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं कि बस भगवान से कुछ मांग लिया। यहाँ समर्पण का मतलब है लोक मंगल के लिए, मतलब समाज की भलाई के लिए खुद को अर्पित कर देना।
अच्छा।
उन्होंने उपमाएं भी दी हैं, जैसे पतंगा दीपक की लौ में खुद को मिटा देता है, या लकड़ी आग में जलकर सबको रोशनी देती है। वो कहती हैं कि अगर हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो ये जीवन तो पशु जैसा ही हुआ। मनुष्य होने का मतलब है कि हम समाज की पीड़ा को समझें, महसूस करें और उसे दूर करने के लिए आगे आएं।
ये तो बहुत गहरी बात है, और इसी उद्बोधन में मुझे याद है नारी शक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया था।
हाँ बिल्कुल, और ये उनके विचारों का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, प्रगतिशील और महत्वपूर्ण पहलू है। वंदनीय माता जी उस समय समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी उस पर बहुत चिंता जताती हैं। वो उसे साफ शब्दों में गुलामी तक कहती हैं।
गुलामी, इतना सख्त शब्द?
हाँ, उनका मानना था कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब पुरुष और नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलें, दोनों समान रूप से सशक्त हों, जागृत हों। एक पहिये से गाड़ी नहीं चलती है ना?
सही बात है।
तो वो पुरुषों से कहती हैं कि स्त्रियों को कम ना समझें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी सोच को ऊंचा उठाएं, क्योंकि एक पढ़ी लिखी, समझदार, सशक्त नारी ही अच्छे परिवार और अच्छे समाज की नींव रख सकती है। और वो अपना और गुरुजी का उदाहरण भी देती हैं, गर्व से बताती हैं कि कैसे गुरुजी ने उन्हें हमेशा बराबरी का दर्जा दिया, कभी सेविका नहीं समझा, उन्हें आगे बढ़ाया।
ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
बिल्कुल।
तो ये सिर्फ विचार ही नहीं थे, उन्होंने कुछ करने के तरीके भी सुझाए थे, मतलब व्यवहारिक कदम।
हाँ हाँ बिल्कुल। वंदनीय माता जी सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, वो समाधान भी बताती हैं। वो एक पूरा क्रम बताती हैं, पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, और उससे फिर समाज निर्माण।
अच्छा।
और इसके लिए कई प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं, जैसे स्वाध्याय, मतलब अच्छी पुस्तकें पढ़कर खुद को बेहतर बनाना, फिर झोला पुस्तकालय, जैसे छोटे छोटे अभियान जिनसे ज्ञान सब तक पहुंचे।
झोला पुस्तकालय, ये क्या है?
हाँ, मतलब थैले में पुस्तकें रखकर घर घर या लोगों के बीच जाकर पढ़ने को देना, ज्ञान बांटना, बहुत सरल पर प्रभावी।
वाह।
फिर दीप यज्ञ जैसे कार्यक्रम जिनसे लोग जुड़े, सामूहिक चेतना जगे, आदर्श विवाह बिना दहेज के, जन्मदिन जैसी चीजों को दिखावे की जगह सेवा के कामों से जोड़ना। वो पाखंड और बेकार की रूढ़ियों की आलोचना भी करती हैं, जैसे वो बिल्ली मारने वाली कथा का जिक्र करती हैं शादी के संदर्भ में।
हाँ हाँ, वो तो एक मजाक जैसा है।
बिल्कुल, तो वो कहती हैं कि ऐसी निरर्थक चीजों को छोड़कर प्रगतिशील सोच अपनानी चाहिए, तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लगता है कि ये उद्बोधन एक तरह की पुकार है, अंदर तक झकझोरने वाली, कि पहले अपनी सोई हुई संवेदनाओं को जगाओ, अपनी करुणा को जगाओ, और फिर उस जागृति को एक्शन में बदलो, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ।
एकदम सही कहा आपने, यही सार है। और वंदनीय माताजी ये भरोसा भी दिलाती हैं कि जो सही रास्ते पर चलेगा उसे गुरु सत्ता का, दैवी शक्ति का संरक्षण मिलेगा। लेकिन मेहनत हमें करनी होगी, चुनौतियों का सामना हमें ही करना होगा, विवेक से, हिम्मत से।
भाग्य अपनी जगह, कर्म अपनी जगह।
बिल्कुल, कर्म प्रधान है।
तो चलिए, हमेशा की तरह अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
हाँ, वंदनीय माताजी हमें सिर्फ हाड़ मास का इंसान बनकर जीने की बजाय ब्राह्मण और क्षत्रिय के आदर्शों पर जीने को कहती हैं। यहाँ ब्राह्मण का मतलब वो जो समाज को ज्ञान दे, सही दिशा दिखाए, और क्षत्रिय वो जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा हो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या हम अपने अंदर इन ब्राह्मण और क्षत्रिय वाले गुणों को जगाकर समाज के लिए कुछ सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत गहरा प्रश्न है। इसी विचार के साथ ओम शांति है।
ओम शांति है।